आस्तिक इस वक्त अपनी माँ के कमरे में था। वो पियानो पर वही खतरनाक धुन बज रहा था, लेकिन इस बार उस धुन के खतरनाक होने से ज्यादा आस्तिक के चेहरे पर जो बदलते भाव थे वो ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। उसकी उंगलियां पियानो के पर चल रही थीं और बंद आंखों के सामने सिर्फ अरुणिमा का वो मुरझाया और आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा दिख रहा था। आस्तिक को पता ही नहीं चल रहा था कि वो ये सब क्यों महसूस कर रहा है, क्यों उसे अरुणिमा के लिए बुरा लग रहा है। जैसे जैसे अरुणिमा की बातें उसके ख्याल में आ रही थी, वैसे वैसे उसकी उंगलियां और तेजी से पियानो के बटन को दबाई जा रही थी। लेकिन इस बार वो इतनी तेज बहाव में बह गया कि पियानो की बटन एक आवाज के साथ टूट गई और आस्तिक की सारी उंगलियां खून से सन गई। आस्तिक ने जोर जोर से सांस लेते हुए अपने हताश मन को संभाला, लेकिन वो संभल नहीं रहा था। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और जोर से चिल्लाने लगा, अरुणिमा। कुछ देर अपनी माँ के कमरे में बिताने के बाद आस्तिक वापस अपने कमरे में लौट आया था। जब वो वापस कमरे में आया तो देखा अरुणिमा फर्श पर बिना कपड़ों के ही लेटी हुई है, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल सिकुड़कर एक छोटे से गेंद की तरह लेटी हुई है। उसे ऐसा देखकर आस्तिक का मन कचोटने लगा था। वो देख पा रहा था अरुणिमा के पूरे शरीर पर जख्मों के निशान है। आस्तिक को समझ ही नहीं आ रहा था कि अरुणिमा के घाव उसे बेचैन क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत धीरे कदमों से अरुणिमा के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अरुणिमा शायद इस समय नींद की दूसरी दुनिया में थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब आस्तिक ने उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर रख दिया। उसने अरुणिमा को ब्लैंकेट से ढक दिया, पर वो उसका वो निराशा से भरा छोटा सा सादा चेहरा निहार रहा था। उसके गालों पर आंसुओं की धार एक लकीर की तरह खिंच रही थी और उसके होंठ सूखे हुए थे। आस्तिक अपने मन में उठ रही भावनाओं को संभाल नहीं पाया और धीरे धीरे उसने हल्के से अरुणिमा के होठों को छू लिया, लेकिन शायद ये हल्की सी छुअन भी अरुणिमा के लिए एक दर्द ही था। उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। आस्तिक बस अरुणिमा के उस चेहरे को निहारता है, लेकिन अब वो इस कमरे में और खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अरुणिमा को जितना वो देखता उतना ही उसका मन आत्मग्लानी से भर जाता, इसलिए वो कमरे की लाइट बंद करके अपनी माँ के कमरे में चला गया। जानवी और पृथ्वी दिल्ली के लिए निकल चुके थे, लेकिन इस वक्त उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। दादाजी और दादी जी के परिवार ने उनके लिए एक प्राइवेट टैक्सी बुक की थी और साथ ही उन्हें ढेर सारे तोहफे भी दिए थे। वो दोनों कुलदेवी के मंदिर से सीधे दिल्ली के लिए निकल गए थे। ड्राइवर आगे टैक्सी चला रहा था और पीछे वाली सीट पर जानवी और पृथ्वी खिड़की की तरफ मुंह किए हुए बैठे थे। ड्राइवर बैक मिरर से जानवी और पृथ्वी को देखकर कहता है, लगता है आप दोनों की नई नई शादी हुई है। ड्राइवर की बात पर जानवी और पृथ्वी दोनों चौंक जाते हैं और हैरानी से ड्राइवर को देखने लगते हैं। पृथ्वी गुस्से में कहता है, काम करो अपना, सड़क पर ध्यान दो, बातों पर नहीं। ड्राइवर की डांट सुनकर ड्राइवर चुपचाप से सड़क पर देखने लगता है। जानवी एक नज़र पृथ्वी को देखती है और फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। पृथ्वी खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन में खुद को खोजते हुए कहता है, क्या जरूरत थी इसकी मांग में सिंदूर लगाने की, वैसे भी ये उन लोगों की जिद के कारण हुआ था, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी और शायद जानवी का भी ऐसा कोई इरादा नहीं रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ये बस एक हादसा था, मैं जानवी को उस अस्पताल में छोड़ दूंगा जहाँ उसकी माँ एडमिट है और उसके बाद मेरा और जानवी का कभी आमना सामना नहीं होगा। और ये शादी, शिट यार क्या बोल रहा हूँ मैं, ये शादी कैसे हो सकती है, सिर्फ एक सिंदूर लगा देने से कोई शादी तो नहीं हो जाती ना, फालतू का मेलोड्रामा। पृथ्वी की नज़र जानवी पर जाती है जिसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल रहे थे, शायद वो किसी गहरे विचार में थी। तभी उनकी गाड़ी एक अस्पताल के सामने आकर रुकती है। जानवी हैरान हो जाती है क्योंकि ये वो अस्पताल तो नहीं है जहां उसे जाना था। वो हैरानी से पृथ्वी को देखने लगती है तो पृथ्वी अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहता है, बाहर निकालो। जानवी गाड़ी से बाहर आती है, वो दोनों अपना सामान उतारते हैं और टैक्सी वहां से चली जाती है। जानवी कहती है, ये तो मुझे कहां लेकर आए हो, ये तो वो वाला हॉस्पिटल नहीं है। पृथ्वी ने कहा, तुम्हारी माँ को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, उनका यहाँ पर बहुत अच्छे से इलाज चल रहा है। तुम्हारी माँ इस समय 7th फ्लोर के VIP रूम में है। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशान हो या फिर तुम्हारी माँ के इलाज में कोई भी लापरवाही बरती जा रही होगी तो तुम डॉक्टर नरेश से इस बारे में बात कर लेना। जानवी धीरे से हाँ में सर हिलाती है और अपना बैग उठाकर कहती है, थैंक्स मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, पर अफसोस बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, लेकिन अगर जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पृथ्वी एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी माँ का ख्याल रखो। ये कहकर पृथ्वी जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी वो एक कदम रुक जाता है और पलटकर जानवी को देखकर कहता है, क्या ये सिंदूर तुम्हारे लिए मायने रखता है? जानवी एकदम से चौंक जाती है पृथ्वी के इस सवाल से और फिर वो पृथ्वी को देखते हुए इस बार ये सवाल दोहरा देती है, क्या तुम्हारे लिए मायने रखता है? पृथ्वी जल्दी से नामी सर हिलाता है और कहता है, नहीं, ये सिर्फ एक बेवकूफी में किया गया काम था। इतने सारे लोग थे और फिर कुलदेवी की मूर्ति, जिसे देखकर पता नहीं कैसे मैं हिप्नोटाइज हो गया था और फिर ये हो गया, इसीलिए मेरे लिए ये सब कोई कुछ मायने नहीं रखता है। जानवी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, फिक्र मत करो, मेरे लिए भी ये मायने नहीं रखता है। पृथ्वी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, शुक्र है, फिर तो बात ही खत्म हो गई, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जानवी धीरे से हाँ में सर हिलाती है और पृथ्वी वहां से एग्जिट की तरफ चला जाता है। जानवी पृथ्वी को तब तक जाता हुआ देखती है जब तक कि पृथ्वी उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया। न जाने क्या चल रहा था जानवी के मन में, पर उसका मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। पृथ्वी का एक एक बढ़ता कदम उसके मन में 100 तरह के सवाल पैदा कर रहा था। अनजाने में ही उसका हाथ अपनी मांग पर चला गया। मांग में लगे सिंदूर का एहसास पाते ही जानवी का पूरा शरीर अचानक से कांप जाता है। वो जल्दी अस्पताल के अंदर भागती है और एक अस्पताल स्टाफ से पूछकर जल्दी से वॉशरूम चली जाती है।